नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है, सुर दुर्लभ है ये मनुष्य का जीवन।
हाँ जी।
ये मानव जीवन के मूल्य और उसके असली मकसद पर रोशनी डालता है, तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं।
जी बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव इसमें यही समझाते हैं कि भगवान ने मनुष्य को ऐसे ही नहीं बना दिया जैसे बाकी जीव जंतु, नहीं, इसे तो बड़े परिश्रम से, सोच समझकर, एक खास उद्देश्य से बनाया है, अपनी ही प्रतिकृति जैसा।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि मनुष्य को जो क्षमताएं मिली हैं वो तो कमाल की है ना। जैसे हमारी आंखें, कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट कैमरे भी हमारी आंखों के लेंस का मुकाबला नहीं कर सकते।
सही बात है, और सिर्फ आंखें ही क्यों, हमारे कान सोचिए, सिर्फ आवाज सुनकर पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है।
है तो, पर क्या ये सब सिर्फ मतलब दुनिया देखने, सुनने, जीने के लिए ही है?
यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो असाधारण क्षमताएं हैं ना,
हाँ,
ये सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए नहीं है, असल में इनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, एक उद्देश्य।
उद्देश्य? कैसा उद्देश्य?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार भगवान ने जब ये सृष्टि रची और उनका काम बढ़ा, मतलब इसे और सुंदर और व्यवस्थित बनाना था, तो उन्हें लगा कि अकेले सब संभालना मुश्किल होगा।
उन्हें सहायकों की जरूरत महसूस हुई।
अच्छा,
तो उन्होंने क्या किया?
तो उन्होंने मनुष्य को बनाया अपने पार्टनर के रूप में, अपने सहयोगी के तौर पर। और बनाया भी कैसे, अपनी ही छवि में, अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का अंश देकर, एक तरह से जैसे बाप और बेटे का रिश्ता होता है ना, वैसा।
ओह, तो ये जो हमें बुद्धि मिली है, प्रतिभा मिली है या दूसरी क्षमताएं हैं, ये सब हमारी अपनी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे कलेक्टर को जीप मिलती है या खजांची को चाबियां, वो उनकी निजी संपत्ति थोड़ी होती हैं, वो तो जनता की सेवा के लिए, सरकारी काम के लिए होती हैं।
हाँ, ये तो सही है।
ठीक वैसे ही हमारी ये जो दैवीय संपदाएं हैं, बुद्धि, बल, प्रतिभा, भावनाएं, ये सब हमें लोक मंगल के लिए, संसार को सुखी और सुंदर बनाने में ईश्वर का हाथ बटाने के लिए मिली हैं, अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए नहीं।
लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान शायद ये बात भूल गया है।
हाँ,
पूज्य गुरुदेव भी इसी तरफ इशारा करते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि मनुष्य अपना वो वादा, अपना वो कर्तव्य भूल गया, उसे अज्ञान ने, तृष्णा ने, मतलब कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं ने और वासनाओं ने घेर लिया,
जैसे वो सुरसा का मुंह बढ़ता ही गया था।
हाँ बिल्कुल वैसा ही। और फिर क्या हुआ, मनुष्य इन दिव्य शक्तियों का उपयोग करने लगा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, पेट भरने, वासनाएं पूरी करने, बस इसी सब में। इसी भटकाव पर ना गोपद ब्राह्मण में एक बड़ी मार्मिक कथा आती है।
अच्छा, क्या कथा है वो, जरा बताइए।
आदमी कहाँ मानने वाला था, वो नावों से, जहाजों से वहां भी पहुंच गए अपनी फरियादें लेकर।
तो फिर भगवान कहाँ गए, उन्होंने क्या किया?
कहते हैं आखिर में उन्हें नारद जी ने सलाह दी, कहा प्रभु आप कहीं और क्यों जाते हैं, आप मनुष्य के हृदय में ही जाकर छिप जाइए, ये आदमी बाहर सब कुछ खोजेगा, पहाड़, समुद्र, मंदिर, मस्जिद, पर अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा।
ओ, कमाल की बात है।
और कथा के अनुसार भगवान ने वही किया, वो मनुष्य के हृदय में ही विराजमान हो गए और तब से मनुष्य उन्हें बाहर ही ढूंढता फिर रहा है।
वाह, मतलब ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही बैठा है।
जी हाँ, पूज्य गुरुदेव यही तो स्पष्ट करते हैं, असली ईश्वर या कह लें असली सदगुरु, वो हमारे भीतर ही है, उसे पाने के लिए बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ शायद उतने जरूरी नहीं है जितनी जरूरी है आंतरिक शुद्धि।
आंतरिक शुद्धि मतलब मन को साफ करना, अपनी भावनाओं को सुधारना।
हाँ बिल्कुल, अपने मन के जो विकार हैं, जो गलत भावनाएं हैं, उन्हें हटाना, अपने अंतर मन को पवित्र बनाना, और फिर उस भीतर बैठे ईश्वर को देखने के लिए भी खास आंखें चाहिए।
खास आंखें, वो कौन सी हैं?
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही बताया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। मतलब श्रद्धा जो भवानी का रूप है और विश्वास जो शंकर का रूप है, यही वो दो दिव्य नेत्र हैं जिनसे सिद्ध पुरुष भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं।
अच्छा, श्रद्धा और विश्वास, तो अगर ईश्वर भीतर है और उसे श्रद्धा विश्वास से देखना है, तो फिर सच्ची पूजा क्या हुई? क्या सिर्फ मंदिर जाना या माला जपना ही काफी है?
नहीं, पूज्य गुरुदेव यहाँ वाल्मीकि जी का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि जी डाकू थे, पर जब उन्हें ज्ञान हुआ तो वो सिर्फ राम राम जपते ही नहीं रहे, उन्होंने राम का काम किया, डाकू से महर्षि बने।
हाँ, ये बात तो है।
वो कहते हैं कि राम का नाम लेना फिर भी सरल है, पर राम का काम करना, उनके आदर्शों पर चलना, वो कठिन है। असली उपासना, सच्ची भक्ति तो वो है जो तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मये सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
मतलब?
मतलब ये कि सारे संसार को, हर पुरुष को, हर नारी को, हर जीव को ईश्वर का ही रूप समझो, सिय राम मये देखो, और फिर हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करो, सबकी सेवा करो, सबके भले के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करो। यही असली पूजा है, लोक मंगल ही सच्ची भक्ति है।
समझ गए। तो पूज्य गुरुदेव के इस पूरे उद्बोधन का सार यही निकलता है कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और ये हमें मिला है खास क्षमताओं के साथ एक महान उद्देश्य के लिए।
बिल्कुल सही, उद्देश्य है ईश्वर के काम में, यानी इस दुनिया को बेहतर बनाने में उनका हाथ बटाना, अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना,
और ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं।
हाँ, वो तो हमारे अंदर ही है, बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की आंखी से अपने भीतर झांकने की, और फिर उसी ईश्वर को सारे संसार में देखने की, सबकी सेवा करने की।
वाकई ये चर्चा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। शायद हम सबको ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जो ये अनमोल जीवन और अद्भुत क्षमताएं हमें दी हैं, क्या हम सचमुच उनका उपयोग उसी महान उद्देश्य के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो मिली थी।